يا علي مدد. الوعظ رائے ابولی مشنری وائز نمبر 579
کیلگری 8th of November 1998 مائی لیکچر ٹو سینئرز آن دی سبجیکٹ آف اسپرچولیزم اینڈ دی ہیومن ہیلتھ. اگرچہ یہ واعظ نہیں ہے لیکن ہر اچھی نصیحت واعظ میں آتی ہے، تو میں کچھ بولوں اس کے پہلے شاکر کو یاد کریں اور میں عرض کرتا ہوں ہم صلوات پڑھیں. اللہ گنان بولنے والوں نے اور علی کی شان میں قصیدہ پڑھ کے امام کی محبت کو جگا دیا. شمس کا وہ گنان کہ اب تیری محبت لاگی. آج کے اس سمے کے اندر ایک اچھا پاٹھ اس میں آ گیا کہ جوانی دیوانی کچھ نہ نبھے گی، جیو ندیوں کا نیر چلا. یعنی انسان کی جو جوانی ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی مستی میں رہتا ہے. جوانی ایک بے ہوشی ہے، اس وقت اس کو آئندہ آنے والی چیزوں کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا. جس طرح شراب کی مستی ہے، ایسا جوانی کی مستی ہے. اور وہ مستی ٹوٹتی ہے جب انسان کو بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آ گئی، کھاؤں کھاؤں کرتا ہے، نیند آتی نہیں، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، کھانا چاہتا ہے مگر کھا نہیں سکتا، زیادہ کھا لیتا ہے تو بیمار ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں جو جوانی کی تھی اس طرح اڑ گئیں کہ جیسے پیٹرول ہوا میں اڑ جاتا ہے. اگر آدمی کو خدا تعالیٰ نے جو عقل دی ہوئی ہے اس کا وہ یوز کرے، اور جوانی کے اندر اگر وہ خوش نصیب ہے اور مذہب کے اندر جو آ جاوے، تو بہت سی چیزیں اس کو پتہ لگتی ہیں. بڑھاپے کی جتنی بیماریاں ہیں، میں اپنے اس وقت 80 برس کی عمر میں ہوں اور میری زندگی کے جتنے بھی وہم نکلے اس میں سے کوئی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بڑھاپے کی جتنی کمزوریاں اور بیماریاں ہیں، ایکچولی وہ جوانی میں کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور خاص طور پہ 40 اور 50 برس کی عمر میں وہ ظاہر ہوتی ہیں. 12-14 سال کی عمر سے جیبھ جو ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے. تیکھا، مرچ، مسالہ، خوب نمک، کھٹی چیزیں کھاتا جاوے، ادھر سے پسینہ نکلے، ادھر سے پسینہ نکلے اور کھاتا جاوے. اچھا بچوں کھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرچے مسالہ کھانے والے آدمی کی سب سے پہلے چیز جو بگڑتی ہے تو اس کے آنتڑے بگڑتے ہیں. محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، القبض ام الامراض، جو قبض ہے، قبض یعنی کانسٹیپیشن. نبی فرماتے ہیں کہ کانسٹیپیشن جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. یہ جو بوائلر خدا تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ پیٹ ہے. اور پیٹ کو آنگن کے اندر جس طرح سے آدمی ناچتے ہیں، اس طرح سے نچانے والی ہماری جیبھ ہے، बाद तो पेट खराब हो जाता है। कई आदमियों की आदत है जल्दी जल्दी खाते हैं, कम से कम एक लुकमा मुंह में डालो, 40-50 दफा उसको जरूर चबाओ, और अगर नहीं चबाओगे तो पेट चबाएगा। तो फिर जीभ का काम, दांतों का काम पेट के ऊपर आ पड़ा, पेट बिगड़ गया, कब्ज हो जाएगी, पेट की बीमारियां हो जाएंगी, पेट का अल्सर हो जाएगा, हजम शक्ति खराब हो जाएगी, बहुत सी चीजें खा नहीं सकेगा। और तंदुरुस्ती के लिए ये पहला उसूल है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के खाओ। बुढ़ापा बुरी चीज नहीं, लेकिन अगर हमने जवानी में ध्यान रखा होवे तो बुढ़ापा आसान हो जाता है। बुढ़ापे के दुख जो हैं उनकी शुरुआत जवानी में लगती है। खाने पीने का ध्यान करो। मैं जमात खानों में कहीं भी जाऊं, नांदी के पास पे जरूर जाता हूं, नांदी लेने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि यहाँ की जमात के अंदर खाने पीने की क्या आदत है। और मुझे पता लगता है कि इस जमात के अंदर क्या क्या बीमारियां होनी चाहिए, नदी के पाठ के ऊपर से पता लगता है। घी, तेल, मसाला, तली हुई चीजें, तीखी चीजें, ये बीमारी के घर है। कितने फरमान किए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहजादार ने, मुझे याद है आप में से जो अफ्रीका के लोग हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है उनको याद होगा, 1945 में इमाम ने एक तालिका भेजा, उसके अंदर खाने पीने की चीजें थी और हुक्म किया कि एवरी फ्राइडे 7 ईयर्स तक, 7 बरस वो फरमान पढ़ा जाए, तालिका पढ़ा जाए। और हर फ्राइडे को वो तालिका पढ़ा जाता था कि जिसके अंदर इमाम ने फरमाया सुबह कच्ची पपई खाओ और दोपहर के बाद खाने के बाद पकी हुई पपई खाओ, दूध और छाछ पियो, गाजर का रस पियो, गाजर खाओ, वीक में एक दफा बकरे की कलेजी बॉयल करके खाओ, भाजी बकाला फ्रूट खाओ, गोश्त के लिए मना किया, वीक में एक आध दफा मच्छी खाया करो। ये सारा फरमान जमात को 7 बरस तक यानी 350 दफा ज्यादा वो फरमान पढ़ा गया, बहुत से लोगों ने अमल किया, फायदा उठाया। मेरा एक दोस्त था दारुसलाम के अंदर, बोहरा था, मालदार शख्स थे, करीम जी फैमिली का आदमी था। एक दफा कुछ बैठे थे और ऐसी बातें निकली तो मुझे कहने लगा कि आपके जमात खाने में ये एक फरमान पढ़ा जाता है, क्या मैं वो ले सकता हूँ। मैं बोला हाँ क्यों नहीं, उसमें तो खाने पीने की चीज है। उसको जो खाने पीने की चीजें थी वो उसको मैंने लिख दी। एक बरस के बाद मुझे कहता है कि मेरे बदन की तमाम बीमारियां चली गई, क्योंकि जो खाना पीना है वो हमारे बदन का फ्यूल है। आप नई गाड़ी लो और रेगुलर आपने उसमें गैसोलीन डाला तो वो जल्दी बिगड़ जाएगी, लेकिन आप जो आला किस्म का यानी के 97 डिग्री का जो गैसोलीन है वो डालो तो गाड़ी अच्छी रहेगी। ऐसा ही हमारा बदन है, हमारे गिनानों के अंदर भी खाने पीने के बहुत से इशारे हैं। ये रस्म करने के माँ बाप कहते हैं कि मद यानी शराब और मांस यानी गोश्त न खाओ। 11 साल की उम्र में फिर हसन कबीर दीन ने अनंत अखाड़ा लिखना शुरू किया, जो कि उसके पहले लिखना शुरू किया लेकिन कंप्लीट किया। गुरु हसन कबीर दीन 111 बरस की जिंदगी पाई, 111 ईयर्स, 100 बरस तक फिर हसन कबीर दीन ने कभी गोश्त नहीं खाया, गोश्त नहीं खाते थे। मैंने भी आज 15 साल हुए गोश्त छोड़ दिया और मुझे उससे बहुत फायदे हुए। इधर बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों को पूछो, हालांकि वो खुद गोश्त खाते हैं, मगर वो ये जानते हैं कि रेड मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत होती है, और कोलेस्ट्रॉल आज बहुत बीमारियों का कारण है। मैं अपनी पर्सनल चीजें ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये एक ऐसा यानी मौका है कि मैं आपको कुछ कहूँ। दो बरस पहले कभी मैं फास्ट चलूं तो मुझको सांस चढ़ता था, तो मैं बैठ गया। मैंने सोचा ये हालत तो ठीक नहीं, 78 ईयर्स की उम्र में मुझे ऐसा बने। मैंने क्या किया, घी तेल स्टॉप, नमक बंद, बस ये दो चीजें छोड़ दी। आज तक अभी तक भी श्रीन भाई को मैंने रिक्वेस्ट की कि कभी मेरे खाने का कुछ बंदोबस्त करो तो उसमें नमक नहीं चाहिए। क्या हुआ दीनदारों, डेढ़ बरस लगा 34 पाउंड घट गया। सब कुछ खाता हूँ, पेट भर के खाता हूँ, तेल घी तेल नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए। आस्ते 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 मेरा वजन घटने लगा, बस मेरे बदन के अंदर फुर्ती आ गई, एनर्जी आ गई। हमारे खाने पीने की चीजें बदलनी चाहिए। और मुझे अफसोस है कि हमको लगभग 20-25 बरस हुए अफ्रीका छोड़ के कनाडा आए, और कनाडा आके भी वही चेवड़ा, वही गलिया, वही पाए, वही बिरयानियाँ। ठीक है भाई, दो एक महीने में एक दफा जीभ के लिए खा लो थोड़ा सा, लेकिन इन चीजों को छोड़ो। सिंपल फूड खाओ, बॉयल करके खाओ, ब्रॉयल करके खाओ, सेक के खाओ, और बहुत सी बीमारियां ये सिर्फ चेंज करने से मिट जाएंगी। बुढ़ापा जो है वो इस चीज का नाम है कि बदन की एनर्जी घट गई, वो नाम बुढ़ापा। और एनर्जी घट जाने से बहुत सी चीजें जो फंक्शन कर रही हैं वो फंक्शन करना घट गई उस पे या छोड़ दिया। पीरों के गिनान में है, बौंतर कोठा नव दरवाजा। अभी नौ दरवाजे तो समझे, दो आंखें, दो कान, दो नाक के नक्सोरे, और दो हमारे इवैक्यूएशन के जगह, और एक जमा नौ दरवाजे तो समझे, बौंतर कोठे क्या। कोठा कहते हैं स्टोर को, और यहाँ पीरों का इशारा कोठे की तरफ। ग्लैंड्स हैं, 72 ग्लैंड्स हैं। मैंने अभी तक किसी भी मेडिकल बुक में या साइंस की बुक में नहीं पढ़ा कि 72 ग्लैंड्स हैं, लेकिन हैं। और ऐसे बहुत से ग्लैंड्स हैं कि जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा जो ब्रेन है, सारे का सारा ब्रेन, वो लगभग 2 पाउंड जितना है, लेकिन उसमें जो अपर ब्रेन है जो हमारे फ्रंट में है वो लगभग 8 आउंस जितना है एवरेज। सॉरी, भाइयों का जो ब्रेन है वो आधा आउंस कम होता है, लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा है उसमें। अकल यहां रहती है अपर ब्रेन में। डेढ़ पाउंड का जो ब्रेन है वो लोअर ब्रेन है कि जिससे नर्वस सिस्टम से बाहर निकलता है। ये सारे ब्रेन के नीचे, ऐसा ब्रेन निकाल लो तो नीचे मूंग के दाने से थोड़ा बड़ा, लेकिन चने के दाने से छोटा एक ग्लैंड है जिसको पिनियल ग्लैंड कहते हैं। ये पिनियल ग्लैंड एक सीक्रेशन निकालता है थोड़ी थोड़ी। जब ये बच्चे होते हैं उनका पिनियल ग्लैंड 100% काम करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पिनियल ग्लैंड की सीक्रेशन जिसको मेलाटोनिन कहते हैं वो घट जाती है। और इसका कारण क्या है कि जितने दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको ये पिनियल ग्लैंड थोड़ी थोड़ी मेलाटोनिन सप्लाई करता है तो वो जवान रहते हैं, काम अच्छा करते हैं। इस तरह पीर के कहने का ये इशारा कि ये जो जितने भी ग्लैंड्स हैं और जितने हमारे दरवाजे हैं इनकी फंक्शन अगर बराबर रहती होवे तो आदमी की तंदुरुस्ती रहती है। और कुरान शरीफ के हिसाब से 120 बरस आदमी की उम्र है, लेकिन कोई 40 बरस में मर जाता है, कोई 80 बरस में मर जाता है, कोई 12 बरस में मर जाता है, बच्चे मरे माँ के पेट से मरे हुए निकलते हैं। ये फिर लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कर्मा पास्ट जन्म का भी है, ये जन्म का भी है। माँ के पेट में 8 महीने तक बच्चा बढ़ता गया और फिर किसी वजह से माँ के पेट में मर गया और ऑपरेशन से या नेचुरली वो पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा है। अब उसकी जिंदगी 8 ही महीने की थी। क्यों? खुदा अगर जस्ट है तो सबके साथ उसका सलूक यकसा है, और है वो जस्ट बिल्कुल, अदलो इंसाफ करने वाला है। अगर एक नेक इंसान किसी को दुख नहीं देता तो वो परवरदिगार इतना रहीम और करीम क्या लोगों को दुख देगा? लेकिन अभी लोग हाथ से दुख ले लेते हैं, उसका लॉ तोड़ते हैं, तो बस उसने लॉ बनाए हुए हैं। हमारी जिंदगी के लॉज हैं, हमारी नींद के लॉज हैं, खाने पीने के लॉज हैं, हिलने फिरने के लॉज हैं, हर चीज खुदा की तमाम खुदाई में आप देखो तो लॉज काम कर रहे हैं। जब लॉ बिगड़ता है तो सजा मिलती है। अबू अली सीना एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर हुए, उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उसके पास एक आदमी आया, जब उसकी टर्न आई उसके पास गया हकीम के पास, अबू अली सीना नब्ज देखी, क्या बात है? कहते पेट बहुत दुखता है, क्या खाया था? रोटी खाई थी। कैसी रोटी थी? कि थोड़ी जल गई थी तो भी मैं खा गया। नौकर को कहा सुरमा लाओ, सुरमा उसको बोला आंखों में सुरमा डाल। वो कहता है हकीम शेख पेट दुखता है तुम आंखों में सुरमा डाल क्यों? कहता है इसलिए कि तूने देखा कि ये जली हुई है फिर भी खाई तो तेरी आंखें खराब है। तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं आपको ये अरज करता था, ये थोड़ी छोटी छोटी मैंने आपको बातें सुनाई है, अभी मैं उनको इकट्ठा करता हूं। जो हो गया वो हो गया। इस वक्त यहां थोड़े से जवानों को निकाल के जो सीनियर्स जिनको आमतौर पे यहाँ ओवर 60 माना जाता है वो और सब, मैं कुछ बातें अपनी जिंदगी के एक्सपेरिमेंट्स में से निकाल के कहता रसूलुल्लाह को फिर याद करता हूं। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर तेरे को 3 रोटियों खाने की तौफीक है, भूख लगी है, तो नबी फरमाया 2 खाओ, 1 रोटी छोड़ दो, पेट भर के कभी मत खाओ। और नबी फरमाया कि खाते खाते खाने से पहले थोड़ा पानी पी लो, लेकिन खाते खाते पानी ना पियो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं इमीडिएटली ब्रेन ऑर्डर करता है लिवर को, तो जो लिवर है वो एप्रोप्रिएट एसिड्स बॉयल्स वगैरह निकाल के पैदा करके स्टमक को भेजता है ताकि वो हजम हो सके। और अंदर खुदा ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आप गोश्त खाओ तो गोश्त के लिए हजम करने का एसिड जुदा है, और आप अगर कोई वेजिटेबल खाओ तो वेजिटेबल के लिए दूसरी किस्म का एसिड है, तो वो एसिड भी वो बना के भेजेगा। इसके लिए बुजुर्ग का कहना ऐसा है कि बहुत वेराइटीज एट ए टाइम मत खाओ। गोश्त खाना है सिर्फ गोश्त खा लो, मगर कभी कभी खाओ। ये सिस्टम भी बुजुर्गों ने, खास तौर पे आयुर्वेद वालों ने और इस्लामिक तिब वालों ने कहा है कि वेजिटेबल और गोश्त मिक्स करके मत खाओ। लेकिन हमारे घरों के अंदर गोश्त वाली दाल भी पकती है, गोश्त भाजी पकाने के साथ भी पकती है, और ये मेडिकल साइंस के हिसाब से इस्लामिक टिप और आयुर्वेद, इनका कहना है ऐसा नहीं। एक दिन नक्की करो, महीने में, दो महीने में एक दफा, आज गोश्त खाना है तो भुना हुआ, सेका हुआ, बॉयल किया हुआ गोश्त खाओ, लेकिन उसके साथ प्याज डालना यानी डूंगरी, अदरक डालना, लहसुन डालना, नमक मत डालना, चलो छोड़ बहुत थोड़ा सा नमक डाल दो, मिर्च मसाला नहीं चाहिए, काली मिर्च डालो, और वो गोश्त खाओ, रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ, रोटी और चावल भी मिक्स मत करो। मैं जवानों की बात नहीं करता, उनको तो पत्थर देखोगे तो वो भी हजम हो जाएगा, लेकिन जो 60 वर्ष के 50 वर्ष के ऊपर हैं, वो कभी ये अमल करेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। 60 वर्ष के ऊपर एक वक्त खाना खाओ, सुबह नाश्ते के अंदर फ्रूट खाओ, दूध और दही पियो। अगर सचमुच आप ये चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा आसान हो, तो मेरा एक नुस्खा है मेरी खुद की पर्सनल लाइफ का, और मैं खुद उस पर आज लगभग 20-25 साल हुए मैं अमल करता हूँ, वो यह है, दही का एक प्याला, घर का बनाया हुआ दही, ये जो बाजार में दही स्टोर्स में मिलता है वो दही नहीं, घर दही बनाओ 2%, और इस दही का सुबह के वक्त थोड़ा 2 या 3 यानी लहसुन काट के डालो, थोड़ा गुड़ डालो, 5 चमची उसके अंदर सिनेमन पाउडर डालो, क्योंकि सिनेमन पाउडर जो है वो डायबिटीज को रिमूव करता है और हमारी पेंक्रियास को एनहेंस करता है, इंसुलिन को करेक्ट करता है। सिनेमन पाउडर खाने से जो डायबिटीज है वो नहीं होती, और कभी खुदा न करे है तो 1-1.5 वर्ष के अंदर बहुत घट जाएगी, शायद न मिटे। तो उसके अंदर फिर आप सीरियल डालना है तो सीरियल डालो, यूं ही खाना है यूं ही खाओ, लेकिन दही का प्याला रोज खाओ। दही के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पेट के अंदर जाके दुश्मन बैक्टीरिया को मार देते हैं, और हमारे आंतड़ों के अंदर ऐसा सिस्टम पैदा करते हैं कि हजम शक्ति अच्छी होती है, खराब खराब डकार और गैस नहीं होती। दही के अंदर बहुत बड़े गुण हैं, और दही खाने वालों की उम्र लंबी होती है। रोमानिया और हंगेरी के लोग बहुत दही खाते हैं, और ईरानी भी बहुत खाते हैं। दही जरूर खाओ, लेकिन खट्टा दही खाने से एक फायदा होगा, नुकसान भी है। जिसको सर्दी की बीमारी है उसको दही खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसको लीवर की तकलीफ है उसके लिए खट्टा दही बहुत अच्छा है, और खट्टा दही खसूसन जो जॉन्डिस होता है उसको रिमूव करता है। जॉन्डिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी के कारण से मिलता है, लेकिन खट्टा दही खाने से जॉन्डिस मिटता है। नॉर्मली खट्टा दही नहीं खाओ, मीठा दही खाओ, और उसके अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान याद कर रहा हूँ, 2-3 दफा मौला के हुजूर में बच्चों की दम की बीमारी, आस्थमा की बीमारी, के बच्चों को दम की बीमारी हो जाती है, मौला ने फरमान किया, जनरल फरमान है कि इन बच्चों को या बड़े आदमियों को जिसको दम की बीमारी आस्थमा है उसको दही में खंड डाल के, मौला फरमाया अगर डायबिटीज नहीं होवे तो खंड डाल के दही खाना तो आस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, दम की बीमारी मिटती है। खंड वाला दही ताकत भी देता है, एनर्जी देता है। सुबह के वक्त फ्रूट खाओ, फ्रूट के अंदर 1 केला, 1 कीवी और 1 कैरेट अगर खा सकते हो तो रोज सुबह न खाना। कीवी धो के पानी से, कीवी का जो फ्रूट है ऑस्ट्रेलिया से आता है, उसको पानी से धो डालो और उसके स्किन के साथ खाओ, छिलके के साथ खाओ, लोग ऊपर से उसकी स्किन निकालते हैं नहीं, स्किन के साथ खाओ, लेकिन केला स्किन के साथ नहीं खाना, केला छिलके खाना। पपाई मिलती है तो पपाई खा रखना। अब हर घर के अंदर ग्रेप्स रखो, और वो भी ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन होते हैं, स्लाइटली रेडिश होते हैं, लेकिन डार्क जो होते हैं वो हकीकत के अंदर ब्लैक नहीं है लेकिन वायलेट कलर के डार्क होते हैं, ब्लैक वो सबसे बेस्ट। और बीज वाले ग्रेप्स खाओ, चबाओ उसके बीज को, बीज फेंको मत। आज डॉक्टरों को तो पता है, आपको भी पता है कि ग्रेप सीड का जूस मिलता है और वो स्पेशली कैंसर के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर ख्याल करो तो कुरान शरीफ के अंदर कुछ फ्रूट की तारीफ की गई है, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें मैं करता हूँ। अल्लाह ताला ने ग्रेप्स का जिक्र किया है, खुदा ताला ने फिग का, जिनको हम अंजीर कहते हैं, उसका जिक्र किया है, खजूर का जिक्र किया है, और फिग की खास तौर पे तारीफ की है। एक फिग हर रोज खाओ, अगर फ्रेश नहीं मिलती तो जो सूखी खजूर है, फिग है, अंजीर, उसको पानी में 2-3 घंटे रखो, नरम हो जाएगी, रात को पानी में डाल दो, सुबह नाश्ते में खाओ। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहजादार फरमाया कि 3 जात की चीजें खुदा ने जन्नत में से नीचे भेजी हैं तुम्हारे फायदे के लिए, फिग, ऑलिव और हनी। फिग, अंजीर, ऑलिव मिलते हैं, वो ग्रीन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ब्लैक सस्ते होते हैं, रेस्टोरेंट में ज्यादा उसी का यूज होता है, लेकिन ग्रीन ज्यादा अच्छे हैं, बड़ी साइज का, यानी आप एक आउंस के अंदर मुश्किल से 3 आम, इतने बड़े बड़े भी मिलते हैं, और ये 1 या 2 जरूर खाया करो, ब्लड को क्लीन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करते हैं, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा, पेट को साफ करते हैं, पेट को साफ करने के लिए अंजीर भी बहुत काम आती है, अंजीर पेट को भी साफ करती है, मेमोरी के लिए अच्छी है। और हनी, हनी के लिए तो एक स्पेशल आयत खुदा ने लिखी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनाफ़ेउल लिन्नास, इसके अंदर लोगों के लिए फायदे हैं, हनी कभी बिगड़ता नहीं, कोई बैक्टीरिया हनी में जीता नहीं रह सकता। इजिप्ट के अंदर आज से लगभग 40 साल पहले इन्होंने एक जो पिरामिड है उसमें खोद काम किया, और अंदर से जब ये माल मता निकाला तो एक जार में 4000 बरस पुराना हनी मिला, और अभी भी ऐसा ही फ्रेश है, हनी कभी नहीं बिगड़ता। पानी, गिलास में थोड़ा पानी डाल के फिर एक आधा चमचा या 1/4 टीस्पून हनी उसमें फेंक दो, मिक्स नहीं करना। सुबह आप उठ के देखोगे तो वो हनी ऐसा ही पड़ा होगा, मिक्स नहीं होगा, ये प्योर हनी है। मगर जो हनी ऊपर थोड़ा मिक्स हो जाए, समझना इसमें बेसन है। कम से कम आधी चमची हनी रोज खाओ, बच्चों को वर्ल्ड कंट्रीज में देते हैं, यहाँ और बात है। हनी इंसान के ब्रेन के लिए, अक्ल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, शार्पनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है। जब आज सर्दियों का मौसम है, मैं वीक में 3 दफा जिस तरह सुरमा डालते हैं, ऐसा हनी में सुरमा डाल, वो सिलाई डाल के मैं आंख में डालता हूँ सोते वक्त, और फिर आंख बंद कर लेता हूँ सुबह तक, थोड़ा जलता है। गर्मियों के अंदर मैं कैस्टर ऑयल की 1-1 बूंद आंख में डालता हूँ, वो भी रात को आंख में डाल के आंख बंद कर लेनी सुबह तक। आपके सामने बैठा हूँ, पढ़ने के लिए चश्मा नहीं चाहिए, ड्राइविंग के लिए नहीं चाहिए। आंखों की बीमारियों के लिए हनी का इस्तेमाल करो, और हनी से मैं आपको उसकी ज्यादा डिटेल्स बयान करूँ फजूल है, आपको बहुत फायदे होंगे। हनी की मालिश भी हो सकती है, आर्थराइटिस के अंदर जब ये बहुत दुखता है तो हनी को थोड़ा गर्म करो और थोड़ा कपड़ा लेके उसमें इसको बिछा दो और आसराय चीज की जगह जहाँ बहुत दुखता है उसको उधर रख दो। लपेटना तो लपेटो लेकिन यहीं पड़े रहो, आधे पौने घंटे के बाद निकाल डालो, साफ कर डालो। और भी किसी जोड़ों के दर्द के लिए भी हनी बहुत अच्छी चीज है। और हनी आप बच्चों को खसूसन जो छोटे बच्चे हैं जिनके नवे नवे दांत निकले हैं, हनी अंगली उंगली पे लेके उसके दांतों को घसो और बोलो फिर गार्गल कर ला दे, दांत मजबूत रहेंगे, चमकदार रहेंगे। ऐसे हमारे गिनानों में, कुरान में, हदीस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो इंसान की अच्छी तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है। मैं सेकंड जब लेक्चर करूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि इंसान को इबादत के लिए, मजहब के लिए, रूहानियत के लिए तंदुरुस्ती की बहुत जरूरत है। अगर आपकी तंदुरुस्ती बराबर नहीं, कंसंट्रेशन नहीं कर सकोगे, तो तंदुरुस्ती का हिसाब पहले करो। ए मोमिनो, ये जो बदन है ये उस परवरदिगार की अमानत है, ये बदन उसका टेम्पल है, मंदिर है, मस्जिद है। हमारे गिनानों में भी है कि काया हमारी मस्जिद, काया जो है वो मस्जिद है। और ऐसे और भी गिनाने सतगुरु के सलोके के अंदर भी है कि ये जो घट है ये मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर खुदा का नूर है। तो अगर हम जमात खाने की इज्जत रखते और कदर करते, साफ करते हैं, तो क्या बदन हमारा दुश्मन है या हम बदन के दुश्मन हैं? हम अपने बदन का ध्यान नहीं रखते। जाहिर और बातुन की सफाई और क्लीनलीनेस चाहिए। जाहिर की क्लीनलीनेस में यह है कि हर रोज कोई भी मौसम हो गए, यहां तो बहुत बड़ी अच्छी कंफर्ट की चीजें हैं, बिल्कुल नल खोलो तो गर्म पानी तैयार है, हर रोज गुसल करो हर रोज, लेकिन ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करो, बन सके थोड़ा ठंडा, आपको जरा ठंडक लगे ऐसा, क्योंकि जरा ठंडक लगने से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा बनता है और ज्यादा गर्म पानी करने से, नहाने से सर्कुलेशन ब्लड लो हो जाता है। जरा स्लाइटली ठंडक कि जो ठंडी महसूस होती हो तो सर्कुलेशन ठीक होता है। तो रोज नहाने से एक किस्म की एक्सरसाइज है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, हमारे पोर्स खुल जाते हैं और हमें तंदुरुस्ती मिलती है, और यह खुद एक एक्सरसाइज उसमें आता है। बहुत से लोग मोजे पहनते हैं, अक्टूबर में पहनते हैं, मार्च में निकालते हैं। मुझे याद है बाज दफा आदमी, खसूसी बूढ़े शख्स जो हैं, वो लेजी हो जाते हैं, और लेजी इसलिए होते हैं कि बदन के अंदर से एनर्जी निकल गई। मैं दरअसलम की बात करता हूं, एक 75 बरस का आदमी मेरे बाजू में आके बैठा, मैं उसने लेट का पीछे बैठा था, अब जो आके बैठा तो ऐसा लगे कि कोई चूहा मर जावे, चूहा समझते उंदर, ऐसी भाष आवे, मुझे अच्छा ना लगे, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सका, जरा फासला किया तो भाष कम हो गई, दुआ खत्म हुई, मैंने बूढ़े को बोला तेरा बापा बारिश है तो मुझे थोड़ा कम आए, उसको बाहर ले गया, बाहर ले गया और उसका मैंने मोजा कहा, मोजा निकल, और उसको मैंने कहा सूंघो, उसने खुद ने नाक ऐसी कर ली। मैं बोला ये बाबा जमात खाने के अंदर आते हो ये मोजे पहनते हैं, ये ठीक नहीं, और मोजे हमारे बूट में भी जाते हैं, बॉडी को जो कपड़े लगते हैं बॉडी के साथ, जैसे कि मोजे हैं फुलाना वगैरह चढ़ी है, उसको हर रोज चेंज करना चाहिए, हर रोज धोना चाहिए, एवरी डे। और वैसे भी हमारे जो कपड़े हैं, शॉर्ट्स पजामा वगैरह है, वो भी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं पहनने चाहिए। क्लीनलीनेस जो है ना वो खुद एक रूहानी चीज है, क्लीनलीनेस ऑफ फिजिकल बॉडी, क्लीनलीनेस ऑफ थॉट्स, और क्लीनलीनेस ऑफ हमारा जीव स्पिरिट, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है मजहब के। तो हमारा बदन साफ और क्लीन रहना चाहिए। मैं फिर आपको रसूलुल्लाह की हदीस सुना। नबी फरमाया कि जो नाखून है ना, इसको काटते रहो। किसी ने पूछा या नबी कब काटे, फरमाया चावल के दाने जितना, जितना चावल ज्यादा है इतना अगर नाखून बाहर आ जाए तो उसको काट डालो, जो नॉर्मली वीक में आ जाता है। जवानों के नाखून जल्दी बढ़ते हैं, उम्र जड़ती बढ़ती है तो नाखून थोड़े स्पीड घट जाती है, नाखून के अंदर नीचे मैल आ जाती है। एक गांव में गया वाज करने के लिए, चांद रात आई, कोई 70-72 बरस का एक यानी टाइटल होल्डर छाता देने के लिए बैठे थे। मैं उसके पास गया, हाथ रखा था पाट के ऊपर, मेरी नजर पहुंची 5 इंच लंबे नाखून काले काले। मैंने हाथ जोड़े हुए थे, पैसे भी दे दिए थे, मैं उठ के चला गया, छाता नहीं दिया, दूसरी लाइन में गया। ये मुझे देखते रहे, चमत्खाना की क्रिया पूरी हो गई, बाहर मिले, मुझे बोला कि आंखें खुलो थी हो कि खराब लग रही है, देखो तो ये नाखून पानी में यानी कि छाते के पानी में डालते हो और उसे हमको छाता देते हो, पहले नाखून तो साफ करो, ये मैल उसमें जाती है पानी में। उस जमाने के अंदर नियाज डालते थे। हमें कितनी चीजें सीखने की हैं मजहब की नजर से। तो नबी फरमाया कि नाखून साफ करो। नबी फरमाया, मैं शायद ये जमात खाने में ना बोलूं लेकिन यहाँ आपको कह दूं कि हमारी ड्यूटी है ना, नबी कहते हैं कि बगल के और प्राइवेट भाग के जो बाल हैं उसको वीक में एक दफा जरूर साफ करो, इससे बड़ी बीमारियां होती हैं। रसूलुल्लाह की हदीसों में, कुरान में, फरमानों में, गिनानों में हमें ऐसी हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत सी चीजें बताई गई हैं। नबी करीम ने फरमाया कि देखो तुम दाढ़ियां बड़ी करते हो ठीक है, लेकिन मूछें काटते रहो थोड़ी। देखो क्या होता था कि बड़ी बड़ी मूछें आ जाने, मुंह तो दिखे नहीं, लिप्स नहीं दिखे, और अब जो कुछ पानी के कोई दूध वगैरह पिए तो पहले मूछें फिल्टर करें फिर वो अंदर जाए। नबी फरमाया मूछों को तिराशो यानी तुम्हारे लिप्स नंगे होने चाहिए ताकि तुम्हें उसका स्वाद भी आवे और डस्ट वगैरह और कोई दूसरी चीज न जावे अंदर। रसूलुल्लाह फरमाया हर रोज आंखों में सुरमा डालो। अभी आप कभी डेजर्ट का ख्याल करो, मदीना मक्का सख्त डेजर्ट है और उस डेजर्ट के अंदर हवा निकलती है तो डस्ट उड़ती है, रेती उड़ती है। खाली रेती तो जादी है मगर उसके साथ दूसरी भी डस्ट है, आपको मालूम है? नहीं मालूम तो आप पूछो, इधर बहुत से आपके पास डॉक्टर्स बैठे हैं, माइक्रोस्कोप डस्ट है वो नजर नहीं आती। वो जो डस्ट निकलती है डेजर्ट के अंदर तो आंखों में जमती है। यहां भी भले हमारे घर है सेंट्रल हीटिंग है ना गैस की, तो उसके साथ बाहर से जो फ्रेश एयर आती है उसमें माइक्रोस्कोपिक डस्ट है अंदर। आप एक टेबल के ऊपर कोई चीज या कांच के ऊपर 8 दिन तक या 2-3 दिन तक साफ मत करो और देखो उसके ऊपर ये हमारी जो बाहर से आई हुई डस्ट है ना उधर जमी होगी, ये डस्ट आंखों में जाती है। तो नबी का ये कहना कि रोज आंखों में सुरमा डालो, वो क्या है कि डस्ट जब अंदर आंखों में जाती है तो हमारी आंखों के नीचे और कुछ थोड़ा ऊपर जमती रहती है, जमती रहती है। मेरे अभी तक चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने नबी की हदीसों में से ये सीखा कि 5 वक्त वुजू करते वक्त आंखों में पानी डालो। मैं अगर 10 दफा भी कभी टॉयलेट में जाऊं कि 2 दफा जाऊं, जितनी भी दफा जाऊं, मैं आंखें खोल के ठंडा पानी आंखों में डालता हूं एवरी टाइम। तो मेरी आंखों के अंदर कभी डस्ट पड़ी ही नहीं, अगर है तो निकल जाती है। मोतिया नहीं होता, आंखें खराब नहीं होती है, नजर ठीक रहती है। डस्ट की वजह से मोतिया पैदा होता है। ये जो कैटरेक्ट है क्या है? डस्ट है। आस्ते 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 अंदर के आंसू और बाहर की डस्ट से वो जमती जाती है, उसकी लेयर बन जाती है। ये मोतिया है, पक गया है तो उसको अभी ऑपरेशन करा डालो, लेकिन वो पहले जैसी नजर नहीं रही। लेकिन आप मोतिया होने ही ना दो। जितनी दफा आप जाओ वॉशरूम के अंदर, आंखों में पानी डालते रहो, और इस तरह पानी डालो, इतना डालो कि आंखें खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। उसको बंद करना थोड़ा मुश्किल और इजी ना हो। अब आंखें क्लीन साफ हो गई। तो नबी का यह कहना कि हर रोज सुरमा डालो। सुरमा डालते हैं, मैंने आपको अरज की कि मैं विंटर में मध डालता हूँ, हनी डालता हूँ, और समर के अंदर कैस्ट्रॉल डालता हूँ। कैस्ट्रॉल ठंडा होता है, हनी गर्म है। तो बहुत दफा ठंडी के मौसम में आंखों में पानी निकलता है। आप कभी हनी का उपयोग करोगे, आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा और आंखें क्लीन रहेंगी। रसूल अकरम ने ऐसी हमें बहुत सी चीजें बताई। आपको मालूम है कि सारी दुनिया में ये रिकॉर्ड है, और नॉन मुसलमान जो है वो भी ये बात कहते हैं कि 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह ने हमको दांतन करना सिखाया। टूथब्रश नबी ने यूज किया, जो कि इंडिया में इसके पहले दांतन यूज करते हैं। दांतन क्या है? लीमड़े का दरख्त होवे या किक्कर का होवे, उसकी छोटी सी टहनी काट के तोड़ के उसकी ब्रश करते हैं। तो हर रोज दांत साफ होने चाहिए। तो ये जो हमारी हेल्थ की चीजें हैं, शरीर अगर आपका अच्छा है, आपको पीड़ा नहीं, दुख नहीं, गैस नहीं, उड़कार नहीं, वो हिचकी नहीं, ही कब जिसको कहते हैं, आंखें ठीक है, कान सलामत है, कानों के अंदर मेरी आदत है वीक में एवरी वीक व्हाइट विनेगर, आधा पानी आधा विनेगर मैं कान भर देता हूँ। 5 मिनट के बाद निकाल देता हूँ, फिर यह कान भर देता हूँ। आधा पानी आधा व्हाइट विनेगर, इससे कान साफ रहते हैं और आपको कानों की बीमारी इंशाल्लाह कभी नहीं होती। तो दिनदारो, बुढ़ापा जो है उसको आप प्लेजेंट बनाओ। जब इंसान के अंदर बीमारी और कमजोरी होती है तो चिड़चिड़िया हो जाते हैं। अभी मैं साइकोलॉजिकल साइड आपको बयान करूंगा। बूढ़े आदमी अमूमन उनका मुंह जो होता है ना, वो हंसता हुआ नहीं होता है, ऐसे ऐसे बैठे जो मुंह ऐसा ढीला होता है, ये साइड नीचे हो जाती है। बात करो तो उसमें गर्मी नहीं है, क्योंकि अंदर तंदुरुस्ती नहीं। और तंदुरुस्ती जब अच्छी होती है तो आदमी चीयरफुल होता है। बच्चों की भी आदत है, जिन बच्चों की नींद अच्छी नहीं या उनके पेट दुखता है, उन बच्चों के अंदर चीयरफुलनेस निकल जाती है। तो अच्छी तंदुरुस्ती से आदमी चीयरफुल रहता है। बुढ़ापे के अंदर तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी हर वक्त खुश और मजे में रहे। और खुशी मजे के लिए मैं सेकेंड लेक्चर में बात करूंगा रूहानी हिसाब में, कि हमारा तंदुरुस्ती अच्छी रहने से हमारा बुढ़ापा प्लेजेंट बनता है, ईजी बनता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। मेरे मौला का करम है, 122 कंट्रीज देखी मैंने। मैं दुनिया के राउंड द वर्ल्ड 6 दफा ट्रिप लगाए, मेरे जितना शायद कोई नहीं फिरा होगा। ये सब उसका करम है, मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। और इसमें एक और चीज भी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बात की कि हमेशा चीयरफुल रहो, गम को नजदीक मत आने दो, अपनी बॉडी की एनर्जी बिल्टअप करो। एनर्जी बिल्टअप करने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो यह है कि हमारी कोई ना कोई एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। जिस तरह रेगुलरली दुआ पढ़ते हैं, ऐसा एक्सरसाइज करना दुआ की तरह आप मांग लो। दुआ हर रोज पढ़ते हो, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करो। बर्फ पड़ रही है, बाहर नहीं जा सकते, ओके घर के अंदर किसी चीज को पकड़ लो, उठ बैठ करो, या उधर ही जॉगिंग करो, रनिंग ऑन स्पॉट, एक ही जगह खड़े रहो लेकिन आप रनिंग करते हो, ऐसा करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो लेट जाओ, दोनों पांव ऊंचे नीचे करो, एक्रोबैट्स करो, कुछ ना कुछ जरूर एक्सरसाइज करो। अगर आपके घर में 7-8-10 पंक्तियां हैं, स्टेप्स हैं, तो ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, यहां तक के आप हाफ जाओ, थक जाओ, फिर नीचे उतरो, यहां तक के आप हाफ जाओ, थक जाओ, ये भी एक एक्सरसाइज है। गर्दन को जरूर ऐसा 10-20 दफा आगे पीछे, क्योंकि हमारा दिल इधर है, ब्रेन ऊपर है, ब्लड को ऊपर पंप करना है, तो हमारी गर्दन के पीछे जो सिस्टम निकलता है, नर्वस सिस्टम, उसको पूरी तरह से नरिशमेंट मिलनी चाहिए। आपको ये अपने बदन की बातें पढ़नी भी चाहिए। हमारे राइट साइड के ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम निकलता है वो लेफ्ट साइड में आता है, और लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड में आता है। अगर किसी आदमी को खुदा न करे स्ट्रोक लगता है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में उसकी मार पड़ती है, और राइट साइड में स्ट्रोक लगता है तो लेफ्ट साइड में मार पड़ती है। मैं स्ट्रोक की बात करूं, स्ट्रोक इसलिए होता है कि हमारी नस नाड़ियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, इतनी नैरो हो गई है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है और स्ट्रोक लगता है। तो अपनी नस नाड़ियों में से कोलेस्ट्रॉल कम होवे, ये हर आदमी को, चाहे वो जवान भी होवे, उसको ये चीज का ख्याल करना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल और फैट चलाना होवे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुश्मन है, और इस तरह से इन तमाम बीमारियों से हम लोग बचते रहे। मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह बैतुल ख्याल की इबादत लाजिम है, और बैतुल ख्याल की इबादत का जो दर्जा है वो रूहानी साइड है, मगर उस दर्जे को हासिल करने के लिए, बैतुल ख्याल के अंदर अच्छी तरह से जाने के लिए, फायदा उठाने के लिए, हमें अच्छी तंदुरुस्ती की बहुत जरूरत है। और उसके लिए मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूं कि हर आदमी को, औरत के मर्द, कम से कम आधा पौना घंटा कोई भी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। अपनी आदत बनाओ, हर आदमी को, औरत मर्द सबको, और छोटी उम्र से अपने बच्चों को ये आदत डालो कि दे मस्ट रीड समथिंग। उस जमाने के अंदर उनको वो कहानियां और स्टोरीज बयान करो, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जाए तो हम उसके ऊपर पढ़ते रहे। पढ़ाई से, स्टडी करने से, रीडिंग करने से कॉन्सेंट्रेशन होती है, और यह कॉन्सेंट्रेशन सुबह बैतुल ख्याल में काम आती है। तो मैं, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कितना टाइम हुआ है, और मैं अभी यहां मैं बंद करता हूं, और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको रूहानियत के साथ मिला के कुछ चीजें कहूंगा। ऐसी खाना खुराक भी है कि जो रूहानियत को एनहेंस करे। सो सी यू अगेन, टीवी वाले बोलते हैं ना, यानी मदद। थैंक यू। हम अपने शाफियत को याद करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वा आले मोहम्मद। मेरा पहले लेक्चर तो इंसान तीन चीजों से मुरक्कब है। एक तो इसकी फिजिकल बॉडी है, दूसरा इंसान का जो ब्रेन है जिसके अंदर अक्ल रहती है, एक वो चीज है जिसमें से ख्यालात बनते हैं, विचार शक्ति बनती है, मन की एक्टिविटीज होती है, तीसरी चीज इंसान की रूह है। मैंने अपनी आवाजों में बहुत दफा इस बात का जिक्र किया है कि जीव और चीज है और रूह और चीज है। फिर ने इसका खुलासा किया, मेरी सारी जितनी भी एजुकेशन है मजहब की उसका फर्स्ट बेस ज्ञान है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार फरमाते थे कि तुम अगर ज्ञान पढ़ो और समझो तो मुझे फरमान करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि ज्ञानों में सब चीजें। सदरदीन माँ बाप फरमाते हैं प्राण पुरुष तो अमर है, प्राण पुरुष, प्राण यानी जीव और जीव का मालिक आत्मा। ये जीव है जो मरता है, जन्मता है, आता है, जाता है, इसको समझना इजी नहीं। कई बरस के बाद मुझे समझ आई कि जीव क्या है, और मेरी शक्ति नहीं कि मैं आपको पूरी तरह समझा सकूं कि जीव क्या है। इसके लिए इंसान को मेडिटेट करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। जब इंसान यक्सु हो जाता है, जब इंसान के ध्यान लग जाता है तो अंदर के पर्दे आस्ते आस्ते खुलते हैं और इंसान को पता लगता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जैसे इंसान को पता है कि मेरे पास $10,000 है, जिसको $1,00,000 है उसको पता है मेरे पास $1,00,000 है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको पता है मेरे पास कुछ नहीं। ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है यही सबसे बड़ी चीज जो हमको इस्माइली मजहब सिखाता है। मैं वाजे में कभी कभी जमात को पूछ लेता, पूछना इस तरह से हूं कि पीर का गिनान सुनाता, कहो रे जीव। पीर कहते हैं कहो रे जीव, मैं किस कारण आया, मुझे बताओ तुम दुनिया में क्यों आए, खाने पीने और ऐश आराम के लिए? ये तो कोई जिंदगी नहीं, क्या हमें मौत भूल गई? और हम लोग जो सीनियर हैं, पीछे देखो तो साल सिंतर ऐसी नेबू जितने मर्द गुजर गए गुजर गए। अब नजदीक में नजदीक क्या चीज है? कब्र। और ऑलरेडी सीनियर जो है 60 बरस के ऊपर, उनका एक पांव तो कब्र के किनारे पर है, और 70 बरस की उम्र के बाद जो बीमार बीमार रहते हैं उनका एक पांव अंदर चला गया कब्र में। और हमें ये ऐसा नहीं है कि दीनदारों कि आदमी बूढ़ा होके ही मरेगा, जवान भी मरते हैं। मैंने पहले कहा पहले लेक्चर में, माँ के पेट से भी मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं, हमें मालूम नहीं। लेकिन जो मोमन है, मोमन से मौत डरती है, और जो दुनियादार है वो मौत से डरता है, मोमन से मौत डरती है। क्योंकि जब तक मोमन की मर्जी नहीं होती मौत उसके पास नहीं आती। मौलाना अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वाड़ी के जमात खाने के बाहर वाड़ी बॉम्बे में है, पीरी जमा था, हसन अली शाह माँ बाप की इमामत का वारा था, लोग दुआ वगैरह पढ़ के नीचे आ जाते थे, जमीन पे बैठ जाते, चटके वगैरह कुछ नहीं, धूल में बैठ जाते। और मौला अली का माँ बाप पीरी जामे में नीचे उतरते थे, दीदार देते थे, दुआ शीश देते थे, चले जाते थे। लोग मौला की दुआ शीश लेके अपने काम पे जाते थे। एक दिन मौला आके उधर, आप कभी बॉम्बे जाओ तो वाड़ी के जमा करने के बाहर एक हौज है, पानी का हौज है, फवारा है फाउंटेन, वो हसनदीशा महबब के जमाने से बना हुआ है। जब वाड़ी में वाला के घर वगैरह तोड़े गए और उधर हॉस्पिटल बना दिया, तो हजरत इमाम शाह करीम ने कहा ये जो फाउंटेन है इसको तोड़ना मत, अभी तक पड़ा है। तो इसके किनारे से आके मौला बैठे अली शाह महबब और जमात को फतेह करते थे, फरमान फरमाते थे। सिर ऊंचा किया तो ऊपर तीन परिंदे, तीन पंछी उड़ रहे थे आगे पीछे। हे जमात, ये देखो वो जो पहला है ना आगे सबसे, वो मेरा मोमन है, और जो दूसरा है उसके पीछे भागता है वो दुनिया है, और जो आखिरी है वो दुनिया के पीछे भागता है वो दुनियादार है। देखो दुनिया मेरे मोमन के पीछे भागती है, लेकिन मोमन उसके हाथ नहीं आता, और दुनियादार दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उसको नहीं मिलती। तो मैंने आपको ये जो बात सुनाई कि दुनियादार मौत से डरता है, लेकिन मौत मोमन से डरती है। सुल्तान शाह फरमाते हैं कि मौत का दिन ईद का दिन है मोमन के लिए, क्योंकि अपने महबूब से मिलता है। क्या कहूँ, वैसे तो मैंने बहुत किए, लेकिन हमारी दुनिया के अंदर लोग इतने फंसे हुए हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि तुम हर रोज नहीं बने तो अठवाड़िए में, हफ्ते में एक दिन किसी कोने में अपने घर पे बैठ जाओ और सोचो मेरी उम्र कितनी है, 40-50 साल। मैंने उम्र में क्या पाया सोचो, जितनी आपकी मेरी उम्र हुई हमने इस उम्र में 60 के दिन कर दिए, इसीलिए 40। मैं सक्सीड हुआ कि फेल हुआ, मैंने दुख ज्यादा उठाया कि सुख भी पाया, क्या मैं अपनी लाइफ से हैप्पी हूं, क्या मुझे एक दिन मरना है, और अगर नहीं मरना तो फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि मरना ही नहीं। लेकिन मौत से तो कोई बच ना सका, तुझे भी मरना ही है। मोमिनो, सारी दुनिया के अंदर आधी दुनिया आधी से भी ज्यादा खुदा को नहीं मानते, नास्तिक है, लेकिन उनको पूछो मौत है तो कहे ऑफकोर्स। खुदा से इनकार करने वाले भी मौत से इनकार नहीं कर सकते, मौत है। तो फिर हमने मौत के लिए क्या सोचा, यदि मरना ही है, सेठ के सामने जाना है, तो फिर क्या मुंह लेके जाएंगे, गुना मौत शौक तेरी मेरी। जमा खाने जाते एक दिन हमारी एक मीटिंग थी, मीटिंग में से मैं जल्दी निकल आया और जमात खाने में चला गया ऊपर जाके, तो उस वक्त मुखी कामड़िया नहीं आए थे, मैं दरखाना बैंकुर की बात करता और उधर सामने कुछ 15-20 औरतें जो नानियां दादियां थी, यानी 60 बरस के ऊपर थी, और उधर मैं तस्वीर निकालू मुझे वो बॉर्डर करे। फिर मैं कहा या मौला इनकी जीभ बंद कर, लेकिन मेरी दुआ कबूल ना हुई। मैं उठा भाइयों की तरफ गया, उन्होंने देखा कि मिशनरी अब बोली आते हैं, नजदीक पहुंचा तो चुप हो गए। मैंने कहा शर्म की बात करो, नानियां दादियां बन गई हो, घर छोड़ के जमात खाने आए हो, इधर दो तस्बीहें निकालो, ये चीची चुटू टू क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सबका एक पांव कवर में ऑलरेडी पहुंच गया है, आकबत का कुछ ख्याल करो। कोई बोली नहीं। आज मैं इधर सीनियर्स को कह रहा हूं, मेरे साथ मैं अभी एमसी बन गया हूँ। हमारा टाइम आने वाला है जो चला गया उससे तो बहुत थोड़ा टाइम है। जवाब खाने जाओ मौला के दरबार में, अरे आंख में पानी लाओ, हे मौला गिनान याद करो, हर चीज हमको गिनाने मिलती है। यानी पेरे साहेब देखो ले, हे मौला तू किस तरह मेरा लेखा करेगा, कोई अच्छी चीज तो दिखती नहीं है मौला, गुनहगार हूँ। हे मौला तू रहम रहीमी है, अभी से मुझे तौफीक दे कि मैं तुझे राजी कर सकूं। जब खाने जाओ तो हुज़्न करो, वो मौला का दरबार है, वो रहीम व करीम है, वो गफूर है, रऊफ है, रहमान है, वहाब है, बख्शने वाला है। उसके पास जरा भी आजिज़ी करोगे तो वो बख्श देगा। जमा खाने में जाके इबादत करो, तस्बीहां निकालो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगो, ताकि जो तंदुरुस्ती होगी तो इबादत कर सकेंगे। लेकिन हमारे जमात खानों के अंदर ये सीनियर लोग इतने डेट हो गए हैं, मेरे साथ मैं भी सीनियर हूं, कि हमें कोई शर्म नहीं इस बात की कि इमाम के दरबार के अंदर मस्ती मजाक करें। घर में ये टेप है ना, टेप 3 इंच की टेप, जब घर से आप निकलो जमात खाने जाने के लिए इधर टेप लगा, और जब मुखी के पास जाओ तभी निकाल के तोबो तोबो बंदूक निकाल करके फिर लगा, ठीक से रखो टेप है, कुछ मत बोलो, चुप रहो और इबादत करो। ये जो जमात खाना जिसको हम कहते हैं ना जमात खाना, नाम मीठा करके दे दिया कि जमात का घर, जमात का घर किधर से आएगा, जमात के बाप का घर है, ये हजर इमाम का घर है, 24 घंटे हजर इमाम वहां बैठा है। जाहिर की आंखों से इमाम नहीं दिखता तो क्या इमाम नहीं है, वो उधर 24 घंटे बैठा है, दिन को भी रात को भी। अब उसके पास जाओ दरवाजे के ऊपर सर झुकाओ, है जिंदार कायम पाया मौला, तेरा शुक्र गुजार कि तूने मुझे तौफीक दी जमात खाने आने की। मैं भले आपको पूछूं, आपके घर में जिसको आप चाहते हैं उसको कहते आओ ना मेरे घर आओ, लेकिन जिसको आप नहीं चाहते हैं उसको आप कभी कहते हैं मेरे घर आओ? आप जिसको पसंद नहीं करते उसको अपने घर नहीं आने देते? वो लोग जो जमात खाने नहीं जाते, हाजिर इमाम उनको नहीं चाहता, पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आते। जिसको मौला चाहता है उसके दिल में प्रेम पैदा करता है, चलो मैं घर जमात खाने जाऊं, क्योंकि वो मौला का घर है और मौला उस पर राजी होता है जो उसके घर पे आता है। अगर दुश्मन भी आ जावे हमारे घर तो हम कहते हैं अच्छा आ जाओ। तो इसलिए वो लोग के जो जिसका ईमान नहीं भी, वो भी कभी मौला के घर पे पहुंच जाता तो रहीम और करीम कहते आ जा, मां की तरह गोद खोल देता है। मौला को हम नहीं जानते, वो इतना बख्शिश वाला है। मैं बैठा हुआ था नैरोबी के जमात खाने में, 76 की बात कर, जमात बैठी है, बड़ी हुई जमात है, मौला खुश है, फरमान करके बैठा, इधर देखा इधर देखा, सबको देख रहा है, किसी से आंखें मिला के ऐसा जरा नोट भी करे, मुखी कहता है खुदा मैं आई गिव यू ए गुड न्यूज, ओह यस मां बाप जल्दी से आओ, खुदा नो इट इज द अटेंडेंस ऑफ जमात खाना इज वेरी गुड, ओ छोटे बच्चों को खिलौना दे दो ना, ऐसा मोटा राजी होके खड़ा हो गया। माई मुखी टेल्स मी that my spiritual children are coming in Jamaat Khana daily, large numbers, and I'm very happy. दो तीन दफा ये फरमान रिपीट करके कहा उसने, I'm very happy. So Parmaya, no other thing makes me that much happy that when I hear you come to Jamatkar. फिर जरा मुंह ढीला करके कहता है when I hear you don't come to Jamatkhana, it hurts me so much. No other thing hurts me that much. जब तुम Jamatkhana नहीं आते मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुखी नहीं करती, लेकिन जब तुम Jamatkhana आते हो तो इससे ज्यादा कोई खुशी मुझे नहीं मिलती. अभी मैं पूछता हूँ जमात को, यहां मैं आपको पूछता हूं, हजरत इमाम को मानते हो आपको यहां, हजरत इमाम का फरमान मानते हो? हाँ. जमात खाने रोज जाते हो? हाँ. मैं कभी घर पे दुआ पढ़ लेता हूँ, काम का ऐसा 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 भाग्य बनाते. वो कहता है जब तुम आते हो तो मैं खुश होता हूँ, तो तुम उसको खुश करना नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि हजरत इमाम आपसे खुश होए? आप ये चाहते हैं कि हजरत इमाम को दिल का दुख मिले? वो कहता है जब तुम नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है, इससे ज्यादा कोई चीज दुखी नहीं करती. किस काम का वो मुरीद है? मैं उसकी जिंदगी के ऊपर कि जिसने बयस करके अपने इमाम को नाराज किया और दुख दिया. नाराज करना और चीज है, या तो दुख देने की बात है, जो जमात खाने नहीं जाता वो हजरत इमाम को दुख देता है. उसका ईमान कैसा, उसकी दस्तवत कैसी, उसकी आमाल किस काम के? जो अपने ईमान की बयस करके जो ईमान को दुख देता है वो तो दुश्मन है. मुरीद कैसे बनेगा? ऐ मोमिन, दीन और दुनिया के सुख जमात खाने में से मिलेंगे. दीन और दुनिया के सुख, दुनिया में भी सुखी होना चाहते हो, तंदुरुस्त होना चाहते हो, इस घर में जाओ और उस घर की इज्जत करो, बहुत इज्जत करो. मैं बहुत दफा अपनी वादों में कह चुका हूं मगर आज मैं फिर रिपीट करता हूं एक चीज कि जमात खाना क्या है. मौलाना अली शाह माँ बाप इमाम है, अली शाह माँ बाप पीरी जामे में है. जब भी जमात खाने में आवे तो शाह पीर दोनों जमात खाने में जावे. मैं लगभग 125 साल की बात करता हूं, 1876 की बात करता हूं. हसन अली शाह माँ बाप ने 5 शादियां की, अली शाह माँ बाप ने 5 शादियां की, और 5वीं शादी जो थी ना वो सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ के साथ थी. सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी वो शहनशाह फतेह अली काचार की लड़की की लड़की थी. दोहरी बच्चा नहीं होता था माता से. सरवर जहान नाम था उनका, लेकिन उसको फिर सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में मतलब सलामत कहते थे. भरा हुआ बदन था, बहुत खूबसूरत थे, गोल चेहरा था और बड़ी अच्छी शायरा थी. हाफिज किराती की शायरी बहुत पसंद करते थे. सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ को बच्चा नहीं होता था. एक खोजी सेक्रेटरी थी, तो एक दिन माता पूछती है कि तुम खोजे लोग जमी, मैंने सुना है बच्चा नहीं होता तो तुम खोड़ा भराते हो, ये खोड़ा क्या चीज है? खोड़ा यानी गोद भरना. हमारी जमात के अंदर ये है कि जब बहुत मुद्दत तक किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो फिर वो इमाम के पास जाके दुआ मांगते हैं, गोद भराते हैं, इमाम उनको कुछ फल देता है, दुआ देता है. कहने लगे हाँ माता, हम लोग गोद भराते हैं. किस तरह गोद भराते हैं? कि हमारी पछेड़ी होती है दुपट्टा, उसका पिल्लू हम ऐसा कर देते हैं तो मौला उसमें कुछ फ्रूट रखता है, हमको दुआ देता है. क्यों हो गई? थोड़े दिनों के बाद माता उसको कहती है तू एक खोजी ड्रेस तो बना दे मेरे को. अच्छा, मदर के लिए खोजी ड्रेस देती है। माता ने पहना आईने में देखा और सब उसका वो रीत बात सीखा। वो जमाने में 125 साल की बात करता हूँ, वो जमाने के अंदर औरतें घूंघट निकालती थी, छेड़ा निकालती थी, ऐसा ऊपर डालते यहाँ तक कोई उसका मुंह देख नहीं सके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कांडी मोला जमात से जो अभी करीमाबाद है, शाबीर दोनों आए। उस दिन प्रोग्राम था तो इसने कहा कि आज इमाम और पीर दोनों जाते हैं उधर। तो इसने खोजी ड्रेस पहना और बोले चलो जमात करने। माता सलामत इतना श्री थी और आए, घूंघट निकाला, खोजी ड्रेस पहना था, वो साथ साथ चले आए जमात खाने के ऊपर, उसको लेके आई भाइयों में। और जब इन औरतों का वारा आया गोद भराने का, तो ये भी माता सलामत और वो उसकी सेक्रेटरी ये लाइन में खड़े हो गए, किसी को कुछ पता नहीं। चलते 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 जब पहुंचे तो खड़े हो गए, अभी इसमें तो घूंघट निकाला हुआ था। तो ये खोजी पाई कमरिया हाजी को, क्योंकि मौला हसन अली शाह मौला अली शाह फारसी जबान में बात करते थे, कमरिया हाजी ट्रांसलेशन करते थे। तो कमरिया हाजी को कहती है, मौला को कहो ये मेरी मालकन है, इसको बच्चा नहीं होता, मेहरबानी करो। थोड़ा आगे हुई, पिल्लू ऐसा किया पछेरी का, हसन अली शाह माँ बाप ने एक एप्पल उठाया, सेब उठाया और इसके अंदर रखा हाथों में, ऊपर हाथ रखा, इंशाअल्लाह जरूर फर्जंद होगा, इंशाअल्लाह फर्जंद यानी लड़का होगा इंशाअल्लाह। दुआ तीसरी वापस बुलाया, कमरे हाजी को हुक्म किया, इसको कहो यानी मुतसल्लिमत को, इसको कहो कि रोज जमात खाने जावे और अपनी पछाड़ी से दोपट्टे से जमात खाने की चटाइयां साफ करे और ये पछाड़ी पहने मगर इसको धोवे नहीं जब तक के इसको हमल न ठहरे। जब ये चली गई तो हसन अली शाह माँ बाप इसको पीछे देखते रहे देखते रहे। लोग भी अजीब होते थे कि इस अकेले भाई को क्यों देखते हैं। जब ही वो नीचे उतर सीधा बैठी नहीं, वो तो नीचे उतर गई, कमरिया हाजी जी खुदा ये औरत कौन थी? बोला मुझे तो पता नहीं, क्योंकि उसने तो घूंघट निकाला था, तपास करो। कमरिया हाजी भागे इधर, मुखिया ने तो पूछा कि ये भाई कौन थी? पता नहीं। वॉलंटियर भाई को पूछा ये भाई कौन थी? पता नहीं। नीचे उतरा ये दो भाइया गई, हाँ कौन थी? पता नहीं, लेकिन हाँ दो भाइया घोड़ा गाड़ी में चली गई है। ऊपर आके मौला को कहा, मौला फरमा तपास करो कौन है। तो ये पीछे नीचे उतरा, मौला की गाड़ी खड़ी थी, अरबी घोड़े, तो पूछा कोचमैन को, बोला वो गाड़ी के पीछे जाओ। चलते 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 अभी फासला काफी था, वो गाड़ी भी जो किराए की टैक्सी थी घोड़ा गाड़ी, वो वाड़ी के जमात खाने के आगे से निकल के अंदर गई। वो खाली होके वापस आती थी तो कमरे हाजी ने उसको खड़ा किया, वो मोमना था। उसको पूछा ये कौन थे? बस दो, सब दो भाइया थी। उसको कौन थी? सब दो भाइया। तू बोलता क्यों नहीं है कौन थी? डरते डरते कैसा माता सलामत क्या वक्त माता सलामत इतना है जमात खाने के ऐसी आ सकती है सरकार माता सलामत है। इतनी देर में वो भाई उतरी जो सेक्रेटरी थी। हाँ इसको तो उधर देखा था रात को, उसका पूछा कौन थी? उसने बोला माता सलामत। कमरिया हाजी को यकीन ना आए, वापस आके मौला को भारत किया, हसन अली शाह माँ बाप हंस के कहते हैं मन भी दान हूँ, मैं जानता हूँ उसको शादी में मैंने जो अंगूठी दी थी ना वो उसके हाथ में थी, वो मेरी बहू है। मदर सलामत सब लोग जब काम पे चले जाए 10:30 बजे नीचे उतरे, क्योंकि मकान सामने थे जमात खाने के, जिधर अभी इधर हॉस्पिटल है इधर मौला का घर था, मकान रहते थे। नीचे आ गए, वो सेक्रेटरी साथ आ गए, दो वॉलंटियर भाइयाँ नीचे खड़ी रहने कि कोई ऊपर मर्द औरत न जावे, और मुतासल्ला ने ऊपर जावे घुटनों के ऊपर बैठ के अपनी पछेड़ी से चटाइयाँ साफ करे, पाठ साफ करे। ये पछेड़ी प्रेम के जावे दो महीने के अंदर खुश हो गई। 10 महीने के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह पैदा हुए। अरे इमाम की घर वाली भी इसके घर की दुआएं लेके अपना खोड़ा भराया। ये जमात खाने की ताकत और है, इस जमात खाने के अंदर बहुत इज्जत करो। जितनी इज्जत जमात खाने की करोगे उतनी रूहानी कुवत बढ़ेगी। कई वक्त कम नसीब आदमी, बदकिस्मत आदमी, बेवकूफ आदमी, मुझे सख्त गुस्सा है कि जब तुम इमाम की बेइज्जती करते हो, जिधर हम सजदा करते हैं उधर हम लंबे पांव करते हैं। इस चीज से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि इमाम के घर में आके तुम इस तरह बैठते हो कि जैसे तुम्हारा घर है। और ये जल्द जलाल हूँ अम्मा नवाज हूँ, ये सुल्तान है, जमीन व आसमान का पैदा करने वाला इसी का नूर है। इसके घर में बहुत डरो, जितनी इज्जत करोगे जमात खाने की उतनी रूहानी कुव्वत बढ़ेगी, दौलत मिलेगी, इंटरनल एक्सटर्नल भी। इज्जत चाहिए जमात खाने से मिलेगी। घर में कजिया कंकार झगड़ा है जमात खाने से वो भी अच्छा हो जाएगा। खुशियां बरकतें चाहिए जमात खाने से मिलेंगी। तंदुरुस्ती चाहिए जमात खाने से मिलेगी। दीन दुनिया की ख्वाहिश है तुम्हें जमात खाने से मिलेगी। अगर तुमको मांगना नहीं आता, पांव लंबे कर लेते हो, यानी मौला के सामने तुम पांव करते हो, खुदा की कसम मेरा चले तो मैं वो पांव काटता हूं। क्योंकि इमाम की बेअदबी मेरे से देखी नहीं जाती। मैंने बहुत दफा आवाजों में गुस्सा भी किया है। कम नसीब है वो लोग कि जो जमात खाने में लंबे पांव करते हैं, और इसका असर इतना बुरा उन पर भी है, औलाद पर भी है। वो कभी सुखी नहीं होंगे। इमाम की बेइज्जती बेअदबी पहली बैच, वहां पांव पीछे रखो, साइड में रखो, सजदा करो। कम से कम एक दफा जमात खाने के अंदर, भले हम दुआ में यूं ही बैठे होते हैं, जमीन तक हमारा पेशानी नहीं जाती, लेकिन दीदारों पहली दफा आए हो या जाते वक्त एक दफा जरूर अपने इस परेशानी को मौला की चटाई के ऊपर खाक में रगड़ो। हलीमी आजिज़ी जाहिर करो, इस जमात खाने की बरकतें मिलेंगी, रूहानी ताकत बढ़ेगी। वो लोग के जो आबिद हैं, इबादत करते हैं, सुबह उठते हैं, जागते हैं, हम लोग खुदा की कसम खाता हूं, मैं सारी दुनिया घूमा हूं, मैंने आपको कहा कि 122 मुल्क देखे हैं, सारी जिंदगी मेरी मैं 10-10 महीने बरस में मुसाफिरी पे रहता हूं। हमारी कौम में खास इसके अंदर बेइल्मी बहुत है बेइल्मी, और हमारे अंदर अदब मान आजिज़ी बहुत कम है। जमात खाने के अंदर हम लोग बातें करते हैं, बातें तो ठीक है, गंदी भूंदी बातें भी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। जमात खाने के अंदर एक दूसरे को मिलो, बोलो यानी मत कैसे हो, ठीक है, क्या हुआ फिर, वो तरह का मैंने वो प्रोनोट लिख दिया था, उसका क्या हुआ, क्या अभी डॉलर का भाव क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, अभी तुम जमात खाने में आए हो और बिजनेस की बातें कर रहे हो, बाहर निकल जाओ, बाहर जाके करो। जमात खाने के अंदर इबादत के सिवा, धर्म मजहब के सिवा और कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे तो लोग मिलते हैं, कितने मिलते हैं, पिछले साथ राजे साथ गाल करने आए, आज बाहर अच्छा बाहर आके बैठो, मैं बैठ जाता हूँ बाहर आके, फिर इसको मिलना मिले, जमा खाने के अंदर तैयारी मत सुखी रहो बात रहो बोला रहे करें जमा खाना फरिश्तों के आने जाने की जगह है। अरे हमको नहीं दिखते हैं लेकिन हजारों फरिश्ते हजारों रूह हैं जमा खाने में आते रहते हैं 24 घंटे आते हैं जाते हैं तो रूहें भी जमा खाने में आती हैं फरिश्ते भी आते हैं। तो जब कोई आदमी उधर ऐसी बेअदबी करता है जैसे मुझको नफरत है तो उन लोगों को उनको भी नफरत है उनको बुरा लगता है लाला करते रहे ऊपर इमाम के घर की बेअदबी करते हैं। अरे भाइयों की शिकायतें आती हैं पॉकेट खोल के अंदर से पैसे घूमने भाइयों की पॉकेट गुम हो जाती है बूट गुम हो जाते हैं टोपियां चली जाती हैं छतरियां चली जाती हैं आए वो जमात खाने चोरी करने के लिए। अरे ऐसे भी लोग हैं नादी लेते हैं पैसे नहीं देते उनका क्या हाल होगा क्या सीनियर्स के लिए खसूसी तौर पे मेरी आदत है मैं हाथ जोड़ता हूं कसम खाओ के जमात खाने में बात नहीं करती। मैं एक दफा टोरंटो गया मैं जमा खाना था उस वक्त बहुत बुरा रंग छोड़ा मैं बूट उतार के मैं अंदर गया मुझे ऐसा हुआ थोड़ा पानी पी अब जो मैं इधर आया तो एक आदमी को देखा 85 बरस का 85 ईयर्स ओल्ड को पानी पिला रहा था मैं बहुत खुश हुआ मैंने कहा शाबाश भाड़े क्या मैं बिस्नरी बाबा क्या करूं इस उम्र में कौन मुझे कोई सेवा दे रहे तो मैं बोला चलो जमात को पानी पिला शाबाश बोला उसके ऊपर और भी राज्य हो मालूम नहीं है कि नहीं लेकिन जहां भी है उसके लिए मेरी दुआ है। उसने जमात को पानी पिलाने की भी खिदमत शुरू कर दी कुछ ना कुछ करो अगर आप जमात खाने में जा रहे हो और कोई उधर कोई जवान के कोई बच्चा कुछ बेअदबी करता है तो प्रेम से उसको समझाओ ये भी खिदमत है लेकिन आप खुद ही बातें करो तो लोगों को क्या समझाएंगे तस्वीर का और हमेशा जमा खाने 10 मिनट पहले जाओ दुआ सिद्धा करो गुनाहों की माफी चाहो अस्तगफुर ना करो मौला से अपने दुख कहो ये मौला तेरे दरबार में आया ये मेरा सवाल है ये मेरा दुख है ये मेरी तकलीफें हैं ये मेरी मुश्किल है तू मुझ पर खुशहाल है कहाँ जाऊँ तुझे छोड़ के उसके साथ बातें करो जमा खाना हमारे लिए सोने चांदी नहीं लेकिन डायमंड की माइन है अच्छी तंदुरुस्ती भी जमात खाने से डायमंड और ये जो शाम के वक्त हम इबादत करते हैं और हम दुआ पढ़ते हैं ये सब इबादत है फिर सुबह इबादत के वक्त हमें इमाम के घर की इज्जत हमें बहुत मदद करती है ये तौकीर और ये उसकी दुआ आशीष उसकी रहमतें हमारे ऊपर हर रोज के माध्यम में जाओ। मैं सॉरी हूँ फिर अपनी बात करता हूँ मेरा 5 महीने पहले पाँव मुड़ गया अंदर से लिगामेंट कट गया डॉक्टर कहता है 7 दिन बेड रेस्ट हाँ हाँ किया दिल में सोचा 7 दिन जमात खाने ना छोड़ना ये तो नहीं बनेगा मैं जमात खाने रोज जाता रहा मौला को कहा चलो कोई भूल की वजह से मुझे ये सजा मिली अरे तेरा दिया हुआ जो दुख है वो भी मेरी इबादत है क्योंकि दुख कब मिलता है जब हम कभी भूल करते हैं तो वो ऐसा रहीम है के 10 थप्पड़ मारने होते हैं ना तो एक हल्का सा मार लेता है बस छोड़ देता है $100 का फाइन होता ना तो कहते हैं $1 दे दे बाकी माफ क्योंकि रहीम है और उसने कुरान में कहा है मैंने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर दी है तो मैंने मौला को कहा क्या मेरे गुनाह थे इसकी सजा है आहिस्ते 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 एक दिन भी मौला की रहमत से दिमाग खड़ा नहीं छोड़ा पाँव भी ठीक हो गया दुख तो आते हैं। हमारी ही भूलों की वजह से दुख आते हैं, लेकिन मौला के घर जाके उधर जो सुकून और राहत मिलती है कहीं नहीं। गए सोमवार को सुल्तान मोहम्मद शाह की 121वीं बरसरी थी, एनिवर्सरी, तो सब गांव जमात खानों में मिशनरियों की वॉइस थी। डाउन टाउन वालों ने मेरी मांगनी की, मैं उधर पहुंचा। सब जमात खानों में 15 मिनट का प्रोग्राम था, तो हमारे लोगों के मुझे पूछते हैं, मिशनरी साहब क्या प्रोग्राम है? मैं बोला मुखी तुम हो जो कहो। तो कहते हैं आपको कम से कम कितना टाइम चाहिए? मैंने मुंह बना के कहा 20 मिनट हो गए तो चले। आप क्या कहते हैं? 45 मिनट। वेरी गुड। मैं बोला मुखी साहब मेरा पाँव दुखता है, इतनी देर खड़ा तो नहीं रह सकूंगा। बोला जितना चलता है। अब जब मैंने वार शुरू की तो मैं भूल गया कि मेरे पाँव भी हैं कि नहीं। और आधे घंटे के बाद बुकी ने मुझे चिट्ठी लिखी कि 1 घंटा पूरा करना। बोला 1 घंटा पूरा वाइफ की मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि पाँव दुखता है, लेकिन बाद में फिर दुखा। बोला अभी भले दुखता है। इमाम का घर है ना, उसकी बरकतें मैंने देखी है, उसकी खुशियां भी देखी है। क्या कहूँ, मुंह बंद है। ऐसी ऐसी चीजें जमात खाने से मिली है, जमात खाने की बहुत इज्जत करो, मजहब की तमाम चीजों की इज्जत करो। नाती लो वो खुद के खाने के लिए, दूसरों को देने के लिए नहीं, कुत्ते मिलने के लिए नहीं। आप एक दफा खा लो, बाकी फिर भले कुछ भी करो, मगर नाती लेके किसी को देना वो ठीक नहीं। मैंने एक और चीज देखी, सीनियर्स के अंदर झुरा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल, चॉकलेट का झुरा मिलता है, किसी को डायबिटीज है तो चॉकलेट नहीं खाते। वाइफ हस्बैंड को 2 चॉकलेट मिली, 15 मिनट के बाद फिर को बजने से फिर चॉकलेट मिली, 5-6 चॉकलेट हो गई। प्लेट बना के जमात खाने ले जाते हैं मेहमान के, अरे झूड़े को आपने वापस जमात खाने भेज दिया, बहुत बड़ा गुनाह किया। मौला आपको कोई चीज देता है आप मौला को वापस कर देते हो, झूड़ा खा जाओ, सारा नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। झूड़ा कभी वापस मेहमानी में मत भेजना, नेवर नेवर, आपकी रोजी रिजक खराब हो जाएगी। इमाम आपको बख्शिश देता है, आप इमाम के मुंह पे मारो, तू उतरे वापस। बेद भी है, झूड़ा हमेशा खा जाओ, झूड़ा कभी मेहमानी में वापस मत देना। इसी तरह से है मोमिनो, जमात खाने की जितनी भी बातें हैं उन हर चीजों को समझ के अमल करो। जो समझ नहीं आती किसी से पूछ लो, किसी मिशनरी से। हमारी जो ये बूढ़ी उम्र है इसमें हमारे पास टाइम ज्यादा है, कमानी है नहीं, घर बैठे मौला चेक भेज देता है। शुक्रगुजारी तो मौला की, लेकिन शुक्रगुजारी इस गवर्नमेंट की भी, इस मुल्क की, कि जहां मौला लेके आया है कि हमको घर भेजे। अरे सगा बेटा नहीं भेजता घर पे, ये तो गवर्नमेंट भेज देती है। 10 वन बराबर तो, 10 वन बराबर तो, 10 वन दिए बगैर खाना मत खाना। 10 वन देने के बाद जो कुछ खुदा ने दिया है शुक्रगुजारी करो, सारा दिन इबादत करो। टीवी कोई न्यूज देखनी है देखो, सुना नहीं, लेकिन जमात खाने के टाइम पे जमात खाने पहुंचो। मैंने ये भी देखा है 5-7 सीनियर सिटीजन मिलते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, आज मुझे घर है गुरु भरा। शनिचरवार सुबह उसके घर 8-10 यार दोस्त पहुंचेंगे, कुकरे सेकेंगे और सारी रात पत्ते खेलेंगे। शनिवार की रात सारी रात पत्ते खेलेंगे, फिर संडे सारा दिन पत्ते खेलेंगे, फिर संडे सारी रात पत्ते खेलेंगे, और سب مرد اٹھائیں گے. یقین یقین بھی سب ان کا حال قبر میں کیا ہوگا ان کو پتا نہیں. جمع کھانا چھوڑا پتے کے لیے, ککڑے کے لیے, جمع کھانا چھوڑا یاروں دوستوں کے لیے. کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کیا اسماعیلی کی زندگی ہے؟ نہیں, ایسا مت کرو. خدا نہ کرے کوئی کرتا ہوئے تو, میں تو جنرل بات کرتا ہوں. عبادت کرو, تسبیحاں نکالو, دوسروں کے لیے بھی مانگو, دوسروں کے لیے. اے مومنو, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو, شکر گزاری کرو. اس نے تندرستی دی ہے, اچھا عمر دیا ہے, کوئی عیب نہیں دیا, کوئی محتاج نہیں کیا, اور اگر کیا ہے تو شکر کرو کہ مولا میرے گناہ ہے. صبح شام اس کی شکر گزاری کرو, صبح اٹھ کے عبادت کرو, یکسوئی کرو, دنیا کے خیالات مت رکھو, اور اس پروردگار سے عاجزی کرتے رہو. اپنے آپ کو بالکل خاک سمجھو, اور وہ مولا اس کے پاس سے مانگو کہ یا مولا میری موت کب آئے گی تو جانتا ہے, اے مولا آخری دم تیری محبت میں نکلے, یہ مانگو. اور آپ کو سکھی آواز رکھے, ایمان کی سلامتی دے دے, حقیقت سمجھ دے, بدیوں برائیوں